Today's Planet Earth, our living home will be presented in Urdu and English with subtitles in Arabic, Oloxese, Old Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, Urdu and Spanish.
If we have to adapt, like to sea level rise, which is coming upon us. Sadly, so many island states are already encountering it, and we have a challenge with environmental refugees, which is occurring. Very serious problem.
Salaam mahol dost dosto, aur program zameen, hamara mohabbat para ghar mein khush aamdeed. इस किस्म में हम इंटरव्यू जारी रखते हैं प्रोफेसर सलीम अली के साथ, जो पाकिस्तान में पैदा हुए और अमेरिका में वेरमोन यूनिवर्सिटी के माहौल के स्कूल रॉबिनस्टीन में पढ़े। प्रोफेसर अली मुदीर रहे हैं बहुत से अहम माहौलियाती माहदों के माहौल की हिफाजत के सिलसिले में, और हाल में ही उन्होंने शाये की है एक किताब जिसका उन्वान है ज़मीन के ख़जाने, ज़रूरत, लालच और काबिल बर्दाश्त मुस्तकबिल। ये एक ऐसी किताब है जो बात कर रही है कि इंसान कैसे निकाल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है ज़मीन के नायाब तहाइफ को, जैसा कि लोहा और सोना, एक माहौल दोस्त तरीके से। पिछले हफ्ते प्रोफेसर अली ने माहौल को बचाने के लिए और ज़मीन के वसाइल को बचाने पर पाकिस्तान के इकदाम पर बात की, और आज वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे माहौलियाती तब्दीलियों पर।
Climate change, I think, is a manifestation of many other environmental problems in terms of resource inefficiencies, by not really thinking about the full life cycle of what we're using to develop energy resources. So why we became so dependent on coal has a lot to do with how climate change has evolved, because we weren't thinking in systemic ways. We were just thinking of what can we get quickly. And so this kind of a more holistic approach to thinking about environmental problems would have potentially prevented some of the challenges with climate change.
Professor Ali paida hue America mein aur Pakistan chale gaye jab wo 9 saal ke the. Wo kehte hain ki unki parvarish ne unko zyada behtar andaaz mein samajh di mashriq aur maghrib ki tehzeeb ke darmiyan farq ki, और इसने उन्हें एक अनोखा तनाजुर दिया माहौलियाती मौजूआत पर बात करने के लिए। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी हाल में ही सामना किया है लातादाद और शदीद मौसमी तब्दीलियों का आलमी हिद्दत की वजह से। मिसाल के तौर पर हिमालय के ग्लेशियर का तेजी से पिघलना एक शदीद खतरा है मुल्क की पानी की फराहमी के लिए। प्रोफेसर अली बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं आलमी हिद्दत के पाकिस्तान और दूसरे ममालिक पर होने वाले असरात से।
We are at a point now with climate change concerns that to address some of those issues would really be quite difficult without getting into those problems with poverty alleviation. And that's why the biggest problem we have with the climate change negotiations is addressing the concerns of the developing countries. And the clean development mechanism, for example, within the Kyoto Protocol was an attempt to do that, to try and deal with the technological inequality. So my own feeling is that we need a double-pronged strategy on climate change, where we are trying to reduce our emissions, of course. We are trying to be more efficient. But we cannot do that at the expense of complete poverty alleviation concerns, because ultimately the people who are very poor will want to develop at some level, right? So we try to find sustainable sources of energy for them, try to get them solar, wind, hydropower, small hydro rather than coal. Certainly that's all very positive, and they will need help from developed countries to do that.
Professor Ali ka yakeen hai ki sabzi khori par muntakil hona sabse behtareen kaam hai jo ek fard kar sakta hai mausmi tabdiliyon par.
I think we need a much more responsible lifestyle. In terms of lifestyle changes, and this is where education and individual ethics must play a role, religion can play a role positively to inculcate those values. We can get a huge return in terms of our reduction in greenhouse gas emissions if people adopted more vegetarian lifestyles. It's good for their health and it's good for the environment. And you would also be following Islamic ethics, in my view, because in Islam, overall, as with most religions, wastage is a sin. And if you are wasting precious resources to just have a meat-centered diet, I think that is contrary to the vision of Islam. And if you go back to the time of Muhammad, the founder of Islam, Prophet Muhammad, he had a very Spartan lifestyle. He was not into big feasts and huge, you know, grandiose spending and old Muslim traditions. You know, the usual diet was much more vegetable-based.
Professor Ali, अपने मुआशरे में सब्जी खोई की वकालत कर रहे हैं।
I have been trying to move them more towards vegetarian lifestyles, and it's a very big challenge because traditionally Muslim cultures have many rituals which revolve around meat consumption, as with other faith traditions also. So, for example, the Abrahamic feast of sacrifice of the lamb, which is from biblical traditions, is practiced every year in Islam in the festival of Eid al-Adha. And during that festival, there are millions of animals which are slaughtered. But because of the demographic of the Muslim community, it has become such a huge ecological challenge that I have called for Muslim scholars to actually issue a fatwa which makes this a practice sort of an anachronism, that the goal of the spirit of that practice was to show charity and sacrifice. It can be done without having such huge amounts of meat being consumed.
जब हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर अली बात करेंगे मजीद आलमी हिद्दत और खुराक के इंतखाब के दरमियान के ताल्लुक के बारे में. बराए मेहरबानी देखते रहिए सुप्रीम मास्टर टेलीविजन.
I can see meat consumption dramatically reduced across the world with regard to our diets.
خوش آمدید پروگرام زمین ہمارا محبت بھرا گھر میں سپریم ماسٹر ٹیلی ویژن پر, جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک پاکستانی امریکی ماحولیاتی سکالر پروفیسر سلیم علی سے سبزی خوری ہونے کے بارے میں عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے.
اینڈ سملرلی آن این انڈیویجول لیول I have been trying to get Muslim countries to also educate people about the greenhouse gas emissions from especially beef production, which is a huge problem.
پروفیسر علی کی طرح بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے دنیا بھر میں اپنے ساتھی ماننے والوں کو رحم دلی اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں اپنی طرز زندگی میں.
Within Islamic tradition, there is this concept of ijtihad, which is individual reasoning based on the times, where given the situation with the population pressures, especially now the Muslim population is now growing so fast that very soon, within a few decades, it will become the world's largest religion, and it's already by some estimates 1.5 billion Muslims in the world. And so their footprint overall, if their practices are not ecologically sustainable, is going to be enormous. And so this is a very serious challenge. It requires leadership, it requires education at the grassroots, it requires people to move beyond sort of theological inertia. And I'm hopeful. I think we have a new generation of Muslims now who are willing to take up these causes. There's a Green Muslims Network in the US. There are several Muslim scholars who are taking up this call. In Indonesia, the madrasas, the Islamic religious schools, which they call pesantren in Indonesia, they have taken on an environmental education curriculum. There are Islamic religious parties in Indonesia which are actually motivating people to take on an environmental platform in even their political activities. They have campaigned in some cases even against nuclear power. They have campaigned against the use of pesticides. They've been trying to get people to eat more responsibly.
हाल में ही गोश्त के बगैर दिन गुजारने को दुनिया भर में मदद मिली है. मिसाल के तौर पर मई 2009 में घंट शहर बेल्जियम में जुमेरात को वो दिन करार दिया गया जब स्कूलों में गोश्त के बगैर खाना फराहम किया जाता है सब्जियों पर मुश्तमिल खुराक की तशहीर करने के लिए. प्रोफेसर अली का यकीन है कि ये सबसे मौसर तरीका है सब्जी खोरी की तशहीर करने का.
I think it's fantastic, absolutely, and maybe we can slowly move towards more days of the week, and if we can gradually get people to appreciate vegetarian cuisine, I think it'll be healthier for them, and psychologically I think it would be great too, and it would really be a great boon to the farmers who are working in developing different breeds of vegetables and really make it much more exciting. You know, there's far more variety also in the vegetable kingdom than there is among meat, you know, exactly. Dishes. So I think that would be fantastic.
इंटरव्यू के इख्तिताम पर प्रोफेसर अली का उर्दू में पैगाम था पाकिस्तान के लोगों के लिए और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए.
मेरे अजीज हम वतनों, आपसे मैं ये इल्तिजा करूंगा कि आप गोश्त और किसी भी किस्म के जानवर को एक और तरीके से देखें अपनी जिंदगी, मगर सब्जियों को आप ज्यादा अहमियत दें अपनी खुराक में, और खास तौर पे आप इसे इस्लामी तर्ज अमल से भी देखें कि गोश्त खाना कोई एक हमारी मजहबी जरूरत नहीं है. तो मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि कभी कभार आप गोश्त खाएं, मगर आप इसको एक मामूल ना बनाएं और ज्यादा अपनी खुराक में सब्जियों की अहमियत रखें, दाल की अहमियत रखें, और इस तरह से आप अपने खुराक को भी बेहतर करेंगे, अपनी सेहत को भी बेहतर करेंगे. मेरे ख्याल में आप अपनी जो मजहबी भी फराइज हैं उनको भी बेहतर तरीके से सरंजाम देंगे. तो यही आपसे मेरी इल्तिजा है और उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे.
दाद देते हैं प्रोफेसर सलीम अली को उनकी सरबराही के लिए खुराक को तब्दील करने में ऐसी तब्दीली के लिए जिसमें गोश्त ना हो और इसमें जमीन के वसाइल भी कम इस्तेमाल हो. हम इनको दुआ देते हैं कामयाबी की कि उन्होंने अपने लोगों में हमारी एक ही जमीन की हिफाजत के बारे में बहुत ज्यादा शऊर पैदा किया. प्रोफेसर अली पर मजीद मालूमात के लिए बराए मेहरबानी देखिए www.uvm.edu/tildashali. प्रोफेसर अली की किताबें मौजूद हैं amazon.com पर. प्रोग्राम जमीन हमारा मोहब्बत भरा घर में आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया. आगे आ रहा है बसीरत वाली तफरी काबले गौर खबरों के फौरन बाद. दुआ है कि हमारी दुनिया सिर्फ हम आहंगी और खूबसूरती से भरी हो. थैंक यू फॉर योर काइंड कंपनी ऑन प्लैनेट अर्थ आवर लिविंग होम. Up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May our world know only harmony and beauty.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.